येषं पन्थकथापापं जनानां पुण्यकारणानां छेद्वन् वा मोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां धृता वृथा। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated, and who are freed from the duality of delusion, engage themselves in my service with determination.
जो जिन लोगों के पिछले जन्म में पुण्य कार्य हैं और जिनके पाप कर्म जो है वो नष्ट हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति दृढ़ता से मेरी भक्ति में लगते हैं।
In this beautiful verse from the seventh chapter of Bhagavad Gita, Krishna is revealing to us how rare and precious the opportunity is to be engaged in the process of bhakti, of his loving service.
भगवान इस श्लोक में बतला रहे हैं कि कितना दुर्लभ और कितना मूल्यवान है भगवान की भक्ति का एक सौभाग्य प्राप्त होना।
बहुनाम जन्मनाम पंथे ज्ञान वमं प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मसु दुर्लभः। Krishna says that after many births and deaths of following the various practices of yoga and religion, when one ultimately comes to the platform of knowledge, real knowledge, he surrenders to Vasudeva, knowing him to be the cause of all causes and all that is.
भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि कई जन्मों के बाद व्यक्ति जब ज्ञान पालन करता है तो सही ज्ञान के तर्क पे पहुंचता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं।
There is a beautiful verse which we have recited. Vamsha kalpa tarubhyascha kripasindubhya evach, which means that the great devotees of the Lord, they are so kind and merciful, but by just receiving their blessings of a true sadhu, a true devotee, one can acquire the characteristics that would ordinarily take many thousands of births to achieve.
ये एक श्लोक हम जो पहले गाए, वांछ कल्प तरु, इसका अर्थ होता है कि सच्चे वैष्णव जो साधु होते हैं उनके आशीर्वाद से हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है जिसको प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते थे नहीं तो।
ब्रह्मांड प्रामिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसारे वाय भक्ति भक्ति लधारी। The living entity is wandering through various species of life, through various universes, but when he is most fortunate, he meets a pure sadhu, and that devotee plants the seed of bhakti or devotion in his heart.
ब्रह्मांड में कई जीव जो है भटक रहे हैं और उनमें से कोई भाग्यवान होता है तो उसको साधु के दर्शन होते हैं और वो साधु उसके हृदय में वो बीज डालता है भक्ति लता का जो होता है।
This is called kripa or mercy.
इसी को कृपा या दया कहते हैं।
When we speak of mercy, we must understand that it is when we receive something that we really do not deserve.
हम जब कृपा कहते हैं इसका अर्थ यह है कि हमें जो मिल जाता है वो चीज मिल जाती है जिसके हम लायक नहीं हैं।
If you go to a store and you want some food and he tells you this will cost you 20 rupees and you give him 20 rupees and he gives you some food, do you call that mercy?
अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और आपको कोई चीज चाहिए, वो कहते हैं 20 रुपए के, अगर आप 20 रुपए से देते हैं और खरीदते हैं तो क्या आप उसको कृपा बोलेंगे या दया बोलेंगे?
But if you honestly have nothing to give him and you're starving and he gives you out of the charity of his heart for nothing, that is mercy.
लेकिन अगर आप जो है भूखे मर रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है और आप मांगते हैं और वो उदार भावना से आपको कुछ देता है, तब आप उसको कृपा या दया कह सकते हैं।
कृपा सिंधु एवच्या। The devotees of the Lord, they are oceans of mercy because they are giving us something that we do not deserve.
वो भगवान के भक्त जो है कृपा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, क्योंकि हमें वो चीज दे रहे हैं जिसके हम प्राप्त करने के लायक भी नहीं हैं।
To chant the holy name of the Lord, to have this opportunity, or to engage in the service of the Lord, is something that ordinarily you have to act piously and practice religious principles for thousands of births.
ये भगवान का नाम कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, इसके लिए वैसे वास्तव में हजारों जन्म सत्कार्य करना आवश्यक होता है।
But the great devotees, they are oceans of mercy because as unqualified as we are, they are giving us Harinam and they are giving us Bhagavan Seva.
लेकिन ये भगवान के भक्त इतने दयालु हैं कि हालांकि हम अयोग्य हैं, वो उन्हें हमें हरिनाम और सेवा प्रदान कर रहे हैं।
Now, the question of how fortunate we are is whether we are willing to receive this mercy.
अब प्रश्न ये उठता है कि कितने हम जो है भाग्यवान है उस पर निर्भर करता है कि क्या हम वो कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
We can only receive it properly if we have some idea of its unlimited value.
हम उसको सही तरीके से तभी ले सकते हैं जब हम उसकी असीमित जो उसकी कीमत उसको जान सकें।
There is a beautiful story about a great devotee of the Lord.
एक भगवान के महान भक्त की एक कथा बताई जाती है।
He was living in Vrindavan Dham.
वो वृंदावन धाम में निवास करते थे।
In Vrindavan, close to the river Jamuna, is a holy place called Dasha Vadasha Aditya Thiyo.
वृंदावन के पास एक स्थान है जिसका नाम है द्वादश आदित्य टीला।
At the time of Lord Krishna, after Krishna danced upon the hoods of Kaliya, he was feeling very cold.
जब कृष्ण भगवान जी कालिया नाग पर नाचे थे उसके बाद उनको बहुत ठंड महसूस हो रही थी।
So he went on top of this little mountain near the Jamuna.
वो यमुना नदी के पार एक छोटे से पर्वत पर गए।
And the 12 sons of Aditi appeared as suns to give warmth to his body.
आदित्य के 12 पुत्र जो हैं सूर्य के रूप में प्रकट हुए भगवान को गर्मी प्रदान करने के लिए।
And then he became very warm.
और भगवान को बहुत गर्मी महसूस होने लगी।
Krishna is the supreme personality of Godhead.
कृष्ण तो स्वयं भगवान है।
He is not like us that we get colds.
वो हमारी तरह नहीं है कि हमको ठंडी लग जाती है, सर्दी हो जाती है।
Anyone who thinks they are God is crazy.
जो कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है, मतलब वो पागल है।
God is the controller of the entire universe.
भगवान तो पूरे दुनिया के ईश्वर हैं।
When we have to go to the bathroom, we are completely controlled by that need.
जब हमें बाथरूम जाना पड़ता है, तो उस आवश्यकता से हम वश में हो जाते हैं।
Little cold and we get all sick.
थोड़ी सर्दी हो जाए मौसम में हमको बुखार हो जाता है।
We can't even control our sneezing.
और वो जो हमें छींक आती है उसको भी हम रोक नहीं सकते।
And we think we're the controllers of the universe.
हम सोचते हैं कि दुनिया के हम ईश्वर हैं।
हरि ओम।
हरि ओम।
Jivera Swarupai Krishna Nitya Das. We are eternally the servants of God.
हम तो नित्य श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं।
So, Krishna, why does he feel cold?
कृष्ण को क्यों सर्दी लगती है?
Because he wants to give the opportunity for his devotees to give him warmth.
क्योंकि वो अपने भक्तों को एक अवसर देना चाहते हैं उनको गर्मी देने का।
Why does Krishna become hungry in the house of Mother Yashoda?
यशोदा मैया के घर में कृष्ण भगवान को भूख क्यों लगती है?
Just to give Yashoda Mai the opportunity to serve him as a mother and give him her milk.
यशोदा माता के घर में इसलिए भगवान को भूख लगती है कि जिससे उसको एक अवसर मिल सके उनको दूध देने का।
So Krishna is self-sufficient, but for the sake of extracting the love from the hearts of his devotees, sometimes he appears that he is in need.
कृष्ण तो आत्मा में संतुष्ट है, लेकिन भक्तों को अवसर देने के लिए ऐसा लगता है कि उनको कोई चीज की आवश्यकता है.
So on this mountain there lived a great devotee. This was about 500 years back.
आज से 500 वर्ष पूर्व एक भगवान के भक्त वहां पर निवास करते थे इस पर्वत पर.
He was one of the confidential associates of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक थे.
And his name was Srila Sanatan Goswami.
उनका नाम था श्रील सनातन गोस्वामी.
At the time, he was living under a tree.
उस समय वो पेड़ के नीचे निवास करते थे.
He had no home.
रहने के लिए कोई घर नहीं था.
He would sleep in fact under different trees every night.
हर रात्रि को वो अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे.
And he would go out not every day but every few days. And he would beg for one or two rotis from the village people.
वो रोज नहीं बल्कि दो दिन में एक बार जो है गांव के लोगों से थोड़ी रोटी भिक्षा मांगते थे.
And as far as his clothes, he would take one little piece of torn cloth that was to be found on the side of the road.
और जहां तक कपड़े का सवाल है, कोई फटा हुआ कोई कपड़ा रास्ते में मिल जाता था, बस उसी को वो स्वीकार कर लेते थे.
He would never accept anything new.
कोई नया वस्त्र नहीं स्वीकार करते थे.
Only garbage clothes.
बस जो कचरे में गिरा हुआ कपड़ा था उसी को स्वीकार करते.
Although previous to his coming to Vrindavan, he was the prime minister of the whole state of Bengal.
वृंदावन में आने से पहले पूरे बंगाल देश के प्रधानमंत्री वही थे.
He had beautiful palaces, wonderful gardens, thousands and thousands of servants.
उनके बहुत सुंदर बगीचा था, महल थे और हजारों सेवक थे.
But he left that behind because he understood the value of living a simple life in Vrindavan Dham and serving the Supreme Personality of God.
उन्होंने वो सब का त्याग कर दिया क्योंकि उनको समझ में आया कि कितना कीमती है कि वृंदावन धाम में रहना और भगवान की सेवा करना.
So there was once a very greedy man.
एक बहुत ही लोभी पुरुष उनके पास आया.
And he was told that Sanatan Goswami had been given a very mystical stone called the touchstone.
उन्होंने बताया गया कि उनको सनातन गोस्वामी के पास एक मणि है, पारस मणि.
पारस मणि.
पारस मणि.
This paras mani had the characteristic that anything you touch it to becomes pure gold.
किसका ये स्वभाव था जिससे वो स्पर्श करेगा वो स्वर्ण बन जाएगा.
And anyone who has this paras mani can become as rich as he wants to be.
और जिसके पास वो हो वो कितना भी अमीर बनना चाहे वो बन सकता था.
And you know, in this world, money means power.
और इस दुनिया में अगर पैसा हो तो शक्ति होती है.
So whoever has this paras mani becomes very influential and powerful and a leader amongst men.
जिसके पास ये पारस मणि हो वो बहुत बड़ा नेता और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है.
So this greedy man decided that by hook or crook, I'm going to get this paras mani from this sadhu.
तो वो लोभी व्यक्ति ने सोचा कि मैं कुछ भी करके ये जो साधु है इससे मणि मैं ले ही लूँगा.
So he went to Sanatan Goswami ji, and he said, Swami, I heard you had a paras mani.
वो सनातन गोस्वामी के पास जाकर बोले, मैंने सुना है आपके पास ऐसी मणि है.
Sanatan Goswami said, yes, I have.
बोला ये बात सही है, मेरे पास तो है.
It's very valuable, this man said. It is a very valuable thing.
तो लोभी व्यक्ति बोला, हाँ ये तो बहुत कीमती चीज है आपके पास.
Sanatan didn't consider its value.
सनातन गोस्वामी सोचे ये ज्यादा मूल्यवान नहीं है.
He said, I want it, give it to me.
तो लोभी व्यक्ति बोला, मेरे को चाहिए, मुझे जल्दी दीजिए.
Sanatan Goswami said, you can have it.
बोले ठीक है, आप ले लीजिए उसको.
It's over there in the garbage where all the hogs are eating the garbage.
बोलते हैं वहां पर चले जाओ, वहां पर शुकर जो है वो विष्ठा खा रहे हैं, वहीं पर जो है मिल जाएगा.
Many of you have been to Vrindavan.
आप में से कई लोग वृंदावन गए होंगे.
You know how nice the hogs like to eat the garbage.
आप जानते हैं कि जो सुअर होते हैं वो कचरा खाना चाहते हैं.
Very dirty places.
बहुत गंदी गंदी जगहों पर जाते हैं.
So he started going, he started pushing the hogs away.
वो सुअर को दूर करते हुए उधर गए ढूंढने के लिए.
He started shuffling through all the garbage.
और वो कचरा जो है खोजने लगे उसमें से.
And there he found
Parasmani.
उनको वहां पर वो पारसमणि जो है सामने नजर आई.
You may wonder why all the garbage didn't turn to gold.
आप ऐसा सोचेंगे कि वो कचरा था वो सोना क्यों नहीं बन गया.
That's a secret.
वो एक रहस्य है गुप्त.
So after he went through all the garbage, he found the Parasmani, and sure enough, whatever he touched with, that thing became gold.
तो वो ले गए और देखा, टेस्ट किया, कोई भी चीज को स्पर्श करते वो सोना बन जाता.
You may also wonder when he picked it up why he didn't turn to gold.
आप ये भी सोचेंगे उसने हाथ में उठाया तो वो खुद क्यों नहीं सोना बन गया.
Because this Parasmani is a mystical stone.
क्योंकि ये एक जो है बहुत ही अचिंत्य चीज है.
And there is a certain mantra that you must chant to make it act.
वो उसके अंदर एक मंत्र बोलना पड़ता है कार्य करने के लिए.
So he took this Parasmani and he was very happy. And sure enough, everything he was touching with this mantra was turning to pure solid gold.
तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और जिसको भी स्पर्श करते हैं वो बिल्कुल पक्का सोना बन जाता.
And he started becoming very wealthy and very influential.
वो बहुत अमीर और प्रभावशाली बन गए.
And he gained great power.
उनको बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई.
All of his desires were fulfilled.
उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई.
Except there was no peace or happiness.
लेकिन उसको शांति या सुख नहीं मिला.
Because no amount of wealth, influence, or power can bring happiness.
क्योंकि कितना भी हमारे पास प्रभाव हो या पैसा हो हमें सुख या शांति नहीं मिल सकती.
So this man began to think. That anything I want, I have, as far as material possessions.
तो वो ये व्यक्ति सोचने लगा कि मेरे को जो कुछ भी चाहिए वो तो मेरे पास अब मिल सकता है.
And I'm still not happy.
लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ.
I thought I'd be happy.
मैं सोच रहा था कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा.
There must be something better than this Parasmani.
इसका मतलब इससे भी श्रेष्ठ कोई चीज होगी.
And Sanatan must have it.
और सनातन जो है उसके पास जरूर ये होना चाहिए.
Otherwise, why would he keep this Parasmani in the garbage dump with the hogs?
अगर ऐसा इसे अच्छा नहीं होगा तो कचरे में क्यों फेंक देता सुअरों के साथ?
He must have something better, and I must get that.
तो वो बोले कि जरूर इसके पास कुछ ज्यादा अच्छी होगी, वो चीज मुझे चाहिए.
हरी बोल. So he went back to Vrindavan.
तो वापस वृंदावन लौट आए.
And he said, Sanatan Goswami ji, this Parasmani is so valuable. You were keeping it in garbage. You never even used it.
तो बोले कि आपने ये मूल्यवान पारसमणि का उपयोग नहीं किया, इसको गार्बेज में फेंक दिया.
You must have something more valuable than this.
इससे ज्यादा अच्छी कोई चीज तुम्हारे पास जरूर होगी.
Give me what you have.
मेरे को वो दो जो आपके पास है.
Sanatan Goswami ji said, yes, I have something so many millions of times more valuable than this insignificant Parasmani.
हाँ, मेरे पास तो ऐसी चीज है कि जो लाखों गुना ज्यादा अच्छी है इस पारसमणि से.
I want it.
तो बोले मेरे को जल्दी दीजिए वो.
I will give
it. दादा साहब ने कहा ठीक है वो भी मैं दे दूं.
First you take the Parasmani and you throw it in the river Jamuna.
बोले तो पहली बात यह है कि जो पारसमणि है उसको उठा के तुम यमुना जी में फेंक दो.
The man was thinking, if I throw this in the river Jamuna, it's gone forever.
तो सोचने लगे कि अगर मैं फेंक दूंगा तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा.
He threw it in the river Jamuna.
लेकिन उन्होंने फेंक दिया जमुना जी में.
Bowed down at Sanatan Goswami's lotus feet, and he said, "Now, I have given up the best thing I ever had in my whole life."
तो सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर गए, बोले, मेरे जीवन में जो सबसे अच्छी चीज थी, वो भी मैंने छोड़ दिया अभी.
Now you kindly give me the best thing you have.
तो बोले कि अभी जो तुम्हारे पास जो चीज है, वो मुझे दीजिए.
Sanatan Goswami ji said, "Yes." I will now give you the most precious thing in all of the creation.
बोले कि अभी मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मैं दूंगा.
This is the supreme wealth.
ये सबसे बड़ी संपत्ति है.
And it will give you the ultimate happiness.
और ये सबसे बड़ा सुख आपको प्रदान करेगी.
Please sit down.
आप बैठिए.
And you listen carefully.
और ध्यान से सुनिए.
Chant.
मेरे पीछे बोलिए.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare Krishna. कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Because this Maha Mantra is a type of Parasmani that turns the heart into gold.
क्योंकि ये ऐसा पारसमणि है महामंत्र कि हमारे हृदय को स्वर्ण बना सकता है.
It awakens one's original natural prema or love of God.
ये व्यक्ति का जो स्वाभाविक जो भगवान के प्रति प्रेम है वो पुनः जागृत कर सकता है.
It gives an experience of the ecstasy that every living being is longing for birth after birth.
जन्म जन्मांतर से जीव जो है जिस भाव का खोज में है वो उसको प्रदान कर सकता है.
So we should understand that there is nothing in all of creation more precious than the association of such devotees who are giving the greatest wealth of Krishna's holy name.
तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग जो कि दूसरों को कृष्ण नाम दे रहे हैं उससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है.
In the Srimad Bhagavatam there is a story of the birth of Shri Shukadev Goswami.
श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी की जन्म कथा आती है.
Shukadev Goswami was born as the son of that great incarnation of Lord Vishnu. Named Vedavyas.
Shukadev Goswami Vishnu ke avatar Vedavyas ke putra the.
He was within the womb of his mother.
Wo apni maa ke garbh mein the.
He was already a liberated soul.
Wo andar hi hai mukt purush the.
He had achieved the state of mukti.
Unko mukti prapt ho chuki thi.
In that consciousness of mukti, he was in such an ecstasy of liberation and freedom that he had absolutely not the slightest inclination for any material sense enjoyment.
वो मुक्ति में इतने अलीन थे कि उनको इंद्र तृप्ति की बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी.
There was nothing in the world that attracted.
दुनिया की कोई चीज उसको आकर्षित नहीं कर सकी.
Therefore, he was thinking. I'm comfortably situated in this womb of my mother. I will remain here until I die.
वो ये सोच रहे थे कि मैं अपने माँ के गर्भ में आराम से हूँ और बस मृत्यु तक मैं यहीं अंदर ही रहूँगा.
He remained within the womb of his mother for 16 years.
वो अपनी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे.
And he refused to come out.
और बाहर आने से जो इनकार कर दिया उन्होंने.
His mother. Is obviously feeling discomfort.
इधर स्वाभाविक रूप से उसकी माता को बहुत जो है दुख महसूस हो रहा था.
And his father, he wanted to see his son.
और उनके पिता भी अपने पुत्र को देखना चाहते थे.
But as far as he was concerned, this world is so full of entanglements and so full of bondage that if I leave this womb, I may be attracted to something of the world and lose my Brahman mukti liberation.
वो सोच रहे थे कि अगर मैं दुनिया में इतने बंधन हैं, इतने जाल हैं, अगर मैं बाहर निकला, तो शायद ये ब्रह्म मुक्ति को भी खो जाऊंगा.
At that time, Vedavyas began to narrate the beautiful pastimes of Lord Shri Krishna.
उस समय वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथाओं का गान करने लगे. और उनका नाम कीर्तन करने लगे.
When Shukadev Goswami heard that, he realized that the sweetness, the pleasure, and the ecstasy of hearing Krishna's names and pastimes is millions and billions and trillions of times more wonderful than mukti.
वो जब उन्होंने वो सुना, तब उन्होंने देखा कि भगवान के नाम का और लीला का श्रवण करना एक मुक्ति से करोड़ों गुना ज्यादा आनंददायक है.
So he came out of the womb just to hear about Krishna.
वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने के लिए गर्भ से बाहर निकल आए.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
There's a verse in Bhagavatam that explains that even the liberated souls who are self-satisfied, they all aspire to hear the beautiful glories of Shri Krishna.
Srimad Bhagavat mein kaha gaya hai ki jo Atmaram Purush hain, wo bhi Bhagwan ki kathaon ke baare mein shravan karna chahte hain.
So we can understand through these simple stories the value and the worth of associating with devotees and hearing and chanting the glories of Lord Krishna.
हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान के भक्तों के संग करना और उनके श्रवण और कीर्तन करना कितना मूल्यवान है।
And yet, what type of unfortunate people are in this world?
और इस संसार में देखिए फिर भी कितने अभागी पुरुष हैं।
Including our very selves,
हम भी उसी में आते हैं।
That we have so many worldly responsibilities and priorities that we just don't have time to come and associate with such sadhus and hear and chant the glories of the Lord.
हम ऐसे जो है इतने दुनिया के जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं होता कि भक्तों का संग करके नाम संकीर्तन करें।
ध्रुव महाराज, he went to the forest because he wanted to achieve a kingdom greater than his grandfather, Lord Brahma.
ध्रुव महाराज जो है जंगल में इसीलिए गए क्योंकि उनको अपने दादा ब्रह्मा जी से भी ऊंचा जो है राज्य चाहिए था।
His great grandfather. And Vishnu ultimately appeared to him by the grace of Narada and said, "Now I will fulfill your desire. I will give you your kingdom."
Narad Muni ki kripa se Vishnu Bhagwan prakat hue, bole ki main tumhari ichha puri karunga, tumhe rajya dunga.
The Dhruva Maharaj replied that after seeing you, I require nothing else.
Lekin Dhruva Maharaj ne bola ki aapke darshan hone ke baad mujhe ab kuch nahi chahiye.
I was looking for broken pieces of cheap glass and I have achieved the rarest diamond of your darshan.
मैं तो कांच के टुकड़े पकड़ने जा रहा था लेकिन मुझे आपका जो है दर्शन का जो मणि मिल गया, हीरा मिल गया।
But we find in society today that the rare diamond of Krishna Katha and Hari Kirtan is available to everyone, but people are too busy collecting the broken pieces of glass to come and receive this diamond.
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि जो हरि कथा का हीरा सबको मिल रहा है लेकिन लोग वो ना लेकर जो है कांच के टुकड़े पकड़ने में लगे हुए हैं।
Among duskritin or mudha, the people are like asses, like donkeys. They're so busy carrying the burden of all their worldly responsibilities on their back. They're not willing to take the real wealth, the real gift of sadhu satsang and hari kirtan.
लोग जो है गधे के समान हैं और इतना सा बोझा लेकर जिम्मेदारी का चल रहे हैं कि साधु संग और हरि कथा का लाभ नहीं लेना चाहते।
अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, ह्यूमन लाइफ इज ओनली मेंट फॉर दिस पर्पस।
मानव जीवन इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।
तपो दिव्यं मूत्रकयेन सर्वं सुजेयस्यं ब्रह्मसोत्यं फोनंतं नयाम देहो देह भजन लोके कस्तां कमान आर्हति दिव्यचंजे तपो दिव्यं मूत्रकयेन सर्वं The objects of the senses, all the pleasures of our family life, all the pleasures of our social life, they are all available for the dogs and hogs that eat the stool.
ये जो इंद्र तृप्ति है, जो परिवार का सुख है, वो तो कुत्ते और सुअर को भी जो विष्ठा खाने वाले हैं, उनको भी वो सुख मिल जाता है।
There is no real value to any of these things.
इनकी कोई ज्यादा खास कीमत नहीं है।
Human life is not meant to imitate the dogs and the hogs.
मानव जीवन जो है कुत्ते और सुअरों के नकल करने के लिए नहीं दिया गया है।
Human life is meant for self-realization.
वो तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया गया है।
Human life is meant to be delivered from the repetition of birth and death.
मानव जीवन इसीलिए है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकें।
Human life is meant to enter into the eternal leela of Radha and Krishna.
भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट होने के लिए अवसर है।
And to achieve that goal, we must accept sacrifice.
और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जो है त्याग करना चाहिए।
And according to all the shastras, the only purpose of this human existence is to perform that sacrifice.
और सभी शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि यह त्याग करना, यज्ञ करना।
And what is the sacrifice?
और ये यज्ञ क्या है?
यज्ञाय संकीर्तनापराया यजन्ति हि सुमेधे।
नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम सज्ज कबुनो श्रावण आदि सूरी जीति को To associate with saintly people and in their company to learn how to hear the glories of the Lord and chant the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Jor se, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि भक्तों के संग में आकर भगवान का नाम संकीर्तन करना.
भक्ति विनोद ठाकुर सच ए ग्रेट डिवोटी. He was a grihastha.
भक्ति विनोद ठाकुर एक महान भक्त हुए हैं और वह गृहस्थ थे.
He was a magistrate in the legal system. When India was under the British rule.
जब भारत ब्रिटिश राज्य के अंदर थी तब उस समय जो वह है मजिस्ट्रेट थे.
And there was no one more responsible in his social and government duties than him.
और सामाजिक जिम्मेदारी में उनसे बढ़कर जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं था.
He also had a wife named Bhagavati.
उनकी पत्नी थी भगवती.
And between the two of them they had 10 children.
और उनके 10 संतान थे.
But every morning, he would rise early, he would take his bath, and with his mala, he would chant the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो रोज सुबह वो उठते थे और स्नान करने के बाद माला पर इस तरह से ये मंत्र का जाप करते थे.
And he would read Srimad Bhagavatam.
और श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करते थे.
And he would associate with great sadhus.
और वो महान साधुओं का संग करते थे.
And he would serve them with great humility and devotion.
और बहुत नम्रता और भक्ति से उनकी सेवा करते थे.
And then he would go and perform his work.
और फिर जाकर अपना काम करते थे.
And he would come back home.
घर वापस लौटते.
And he would take the money that he earned and use it.
और जो पैसा मिलता है वो उपयोग करते थे.
By distributing prasad,
प्रसाद बांटने में.
By giving in charity the holy name,
भगवान का नाम दान देने में.
By assisting great sadhus in their work,
महान साधुओं की सहायता करने में लगाते.
In this way he was understanding that he was working for money and all of his money was being used to provide a beautiful spiritual atmosphere for his family.
तो इस तरह समझते थे कि वो पैसे के लिए मेहनत करते थे लेकिन वो सारा पैसा जो है आध्यात्मिक माहौल पैदा करने के लिए था.
Each one of his children became great saints.
उनका हर एक संतान जो है महान संत बन गए.
And even the greatest babajis and sadhus would come and touch his feet.
बड़े बड़े साधु बाबा जी भी आके उनके चरणों को पकड़ते थे.
And great sannyasis would come to hear him discuss Srimad Bhagavatam.
और बड़े बड़े सन्यासी भी उनसे श्रीमद भागवत का श्रवण करने के लिए आते थे.
In this way, He showed that even one in family life can be perfect if they just direct all of their energies toward the service of God.
इस तरह से उन्होंने बताया कि परिवार जीवन में रहते हुए व्यक्ति पूर्ण हो सकता है अगर अपनी सारी शक्ति भगवान की ओर केंद्रित करता है.
And he wrote one beautiful song.
उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी.
रीहे ताको पाने ताको सदा हरि बोले ताको सुखे दुखे भूला ना को वर में हरि नाम करो रे गाय भुवन मधु स्वरे गाय भुवन मधु स्वरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम गौरा मधुर स्वरे गौरा मधुर स्वरे. तो उन्होंने जो है एक बहुत सुंदर कविता.
You are a grihastha with family, children, or whether you are a sannyasi living in the forest, it really makes no difference.
चाहे आप गृहस्थ हो अपने पत्नी बच्चों के साथ रहते हो या आप सन्यासी हो जंगल में रहने वाले हो कोई अंतर नहीं पड़ता.
Understand that the real wealth of life is in the holy name of God.
ये समझ लो कि जीवन की असली संपत्ति भगवान के नाम में.
Sincerely chant that name.
सच्चे दिल से उस नाम को पुकारो और इस दुनिया के सब सुख और दुखों से आप मुक्त हो जाओगे, आपको सच्ची संपत्ति प्राप्त होगी, दिव्य चेतना की संपत्ति, कृष्ण भावना।
Whatever our status may be in society, we only have one purpose in this world.
हम चाहे जवान हो या बूढ़े हो या समाज में कुछ भी हो, हमारा एक ही उद्देश्य है जीवन में।
To receive the causeless mercy of the great saints.
महान संतों की जो है कृपा को ग्रहण करना।
To serve them.
उनकी सेवा करना। और भगवान का नाम कीर्तन करना। बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Any questions?
You said in the beginning when you get rid of your sinful tendencies, and you said in the beginning that when you get rid of your sinful tendencies and engage yourself in the service of God, then you realize God. But how to get rid of your sinful tendencies? First, one more. Second, you said when Krishna comes, he is fixed, established in self. He does not need, he is not affected by sun or cold, or he does not need food. He just does it to, for the sake of his bhaktas. I think the, another point of view is, when God comes in a human form, he has to behave exactly as a human being, otherwise we won't dare to approach him. So he has to have hunger and thirst and...
Bad jai. इनका प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि जो पाप कर्म के से मुक्त होना ये आवश्यक है भक्ति करने के लिए, तो हम पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये पहला प्रश्न है। फर्स्ट,
वी बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज बाय एसोसिएटिंग विद सिंसियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड।
हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान के सच्चे भक्तों का संग करते हैं,
and by hearing from them,
और उनसे श्रवण करके,
and by following their instructions,
और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए।
There are two primary instructions,
और इसमें दो मुख्य आज्ञाएं हैं,
yam and niyama,
यम नियम।
One, what we must accept and what we must reject,
क्या हमें स्वीकार करना चाहिए और क्या हमें ठुकराना चाहिए।
We must reject the four pillars of sinful activity.
चार प्रकार के पाप कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए।
Illicit sex,
अवैध स्त्री संग,
any type of intoxication,
कोई भी नशीली चीजें,
the eating of meat, fish or eggs,
मांस या मछली का त्याग का ग्रहण करना,
and gambling,
और जुआ खेलना।
We must give these things up completely.
उनको पूर्णतया त्याग कर देना आवश्यक है।
And we must accept the regular association of devotees.
हमें भक्तों का नियम पूर्वक संग करना चाहिए
and we must chant the holy names.
और भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए।
If we make these principles the foundation of our life and build our life upon that, then gradually we will become purified.
और अगर हम इन चीजों को अपना आधार बनाते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे।
And through the process of purification, the desire for sinful activities is eradicated from our heart.
और इस तरीके से धीरे धीरे हमारे पाप की इच्छा भी निकल जाएगी।
Just by restraining our senses from sins, we may act piously, but still the longing for sinful activity remains.
अगर हम पाप कर्म नहीं भी करते रोकते हैं तो भी हमारे अंदर पाप की इच्छा रह जाती है।
But the name of God is like fire.
भगवान का नाम अग्नि के सदृश है।
It burns all the weeds of sinful desires from our heart.
वो सारे पाप कार्यों की जो इच्छा है उसको भी नष्ट कर देता है।
And also by hearing and chanting the glories of the Lord, this purification takes place.
और भगवान के श्रवण और कीर्तन करने से भी ये शुद्धिकरण होने लगता है।
ओम पवित्रा पवित्र सर्वावस्तम गतोदिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वयाभ्यंतरासूचि। The one who remembers Krishna becomes purified within and without.
जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं वो अंतर और बाहर से जो है शुद्ध हो जाते हैं।
In regard to your second question,
दूसरा प्रश्न वो ये है कि ये पूछ रहे हैं कि भगवान जो है जब वो आप महाराज ने बताया कि उनको सर्दी नहीं लगती फिर भी वो ऐसे सेवा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो इनका प्रश्न था कि शायद भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि वो मानव उसके अगर मानव रूप में नहीं आएंगे तो कोई उनके करीब आ ही नहीं सकेगा
Why does Krishna appear in this world?
ये दुनिया में भगवान प्रकट क्यों होते हैं
परित्राणाय सार्वनाम विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभगामि He comes to annihilate the miscreants, to protect the devotees, and to re-establish principles of religion.
दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं
He does not take birth in this world as we do, being forced by our previous karma.
हम तो पिछले जन्म के कर्मों के कारण जबरदस्ती जन्म लेते हैं भगवान इस तरह से जबरदस्ती नहीं लेना पड़ता
He comes only as an act of mercy to us.
वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं
He comes to attract our hearts back to him.
वो इसलिए आते हैं कि हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं
God does not have to come to this world to annihilate demons.
भगवान को ये दुनिया में असुरों का वध करने के लिए आना आवश्यक नहीं है
He can do that through his various energies.
वो अपनी शक्तियों से भी ये कर सकते हैं
Hiranyakashipu was a great demon.
हिरण्यकशिपु बहुत बड़े असुर थे
Did Narasimhadev have to come and tear him apart?
क्या ये जरूरी था कि नरसिंह भगवान आके उसकी छाती को चीरे
Krishna says, I'm in the heart of every living being.
कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं तो सब व्यक्ति के हृदय में मौजूद हूँ
Krishna is in the heart of Hiranyakashipu.
कृष्ण तो हिरण्यकशिपु के भी हृदय में थे
All he has to do is take his Sudarshan chakra and cut his heart.
और कृष्ण भगवान खाली सूर्य चक्र लेके उसके हृदय को ही काट देना है बस
He doesn't have to appear as Narasimhadev.
उनको नरसिंहदेव के रूप में आना ये आवश्यक नहीं है उसको मारने के लिए
Through material nature, he can create a disaster to kill anybody.
भौतिक प्रकृति के द्वारा वो ऐसा स्थिति पैदा कर सकते हैं कि किसी को भी मार सकते हैं
There's no reason for Krishna to come personally to kill demons.
असुरों को मारने के लिए कृष्ण का आना आवश्यक नहीं है
He can do anything through material nature.
वो भौतिक प्रकृति के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं
And as far as re-establishing principles of religion, he can empower his devotees to do the same thing.
और जहाँ तक धर्म की स्थापना करने का बात है, उनके भक्तों के द्वारा भी वो किया जा सकता है।
Why does God appear as Narasimhadev, Varahadev, or Krishna, or Ram?
भगवान आते क्यों हैं, वराहदेव, नरसिंहदेव, कृष्ण या राम के रूप में?
The real reason is because he wants to attract the hearts of all sincere souls. Back to his lotus feet.
उसका असली कारण ये है कि वो चाहते हैं कि सब बद्ध जीव वापस उनके चरण कमलों में आ जाएं।
So when Krishna appears in an apparently human form,
जब कृष्ण आते हैं तो उनका रूप दिखने में मानव जैसा होता है।
He only comes to attract the hearts of all living beings.
वो इसीलिए आते हैं कि सब जीवों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए।
And even more than that. To exchange love with his devotees.
और दूसरा कारण ये कि वो अपने भक्तों से आदान प्रदान करना चाहते हैं
So whatever Krishna does is for that purpose.
जो भी भगवान करते हैं उसका उद्देश्य यही है
He's not hungry for food.
उनको कोई भोजन की भूख नहीं है
He's hungry for your love.
वो आपके प्रेम के भूखे हैं
And if you give him your love, he's satisfied.
अगर आप उसको प्रेम देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे
But we have to give our love through some external expression.
लेकिन हमें अपना प्रेम दिखाना है कोई बाहरी रूप से
Mother Yashoda loved him as like a mother.
Mother
so she showed her love by giving him her milk.
Mother Yashoda जो है माता वो उनको जो है भोजन देती थी इस तरह से अपना प्रेम दिखाती थी
When Krishna would steal butter from the gopis, he had no need to steal. His own house, Nanda Maharaj, had plenty of butter.
जब कृष्ण भगवान मक्खन चोरी करते थे दूसरी गोपियों से उनको कोई आवश्यक नहीं था क्योंकि उनके घर में ही बहुत सारा मक्खन था
But he wanted to give all the gopis the chance to offer their love in the form of their butter.
लेकिन वो सब गोपियों को एक अवसर देना चाह रहे थे कि मक्खन के रूप में अपना प्रेम प्रदान कर रहे थे
Krishna was not stealing butter.
कृष्ण जो है मक्खन चोरी नहीं कर रहे थे
He was stealing hearts.
वो लोगों का हृदय चोरी कर रहे थे
And if your heart becomes very soft like butter he will steal your heart also
agar aapka hriday bhi bilkul makkhan jaisa komal ho jayega to wo bhi chori kar lenge
see in order to make butter you have to churn cream
makkhan banane ke liye pehle bahut ragadna padta hai
I'll tell you the secret churning process to make your heart into sweet butter.
तो अभी हृदय को कैसे मक्खन बनाना है वो तरीका महाराज बताएंगे.
Every day you should go Hare Krishna.
Na Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare.
Chanting on beats, you know. Churning, you go like this.
बोलते हैं जब दही मत दही मतते हैं तो ऐसे करते हैं और जब माला जपते हैं तो ऐसे ऐसे करते
हैं. Same movement.
वही कार्य है चलाने का ऐसे कराओ या ऐसे करो.
In this way you are churning your heart by chanting Hari Nam.
ऐसे हरि नाम से जब अपने हृदय को आप मत रहे हैं.
हरि बोल
हरि बोल
जोर से बोलिए हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल हरि बोल. So when we do this churning process every day, it makes our heart sweet and soft like butter, and then Krishna will come and steal your heart.
तो जब हम ऐसे रोज मत्ते रहेंगे तो एकदम नरम और मीठा हो जाएगा फिर कृष्णा आके इसको चोरी कर जाएंगे.
Krishna is hungry to taste the love of our heart.
कृष्णा हमारे हृदय का प्रेम चखने के लिए बहुत भूखे हैं.
Therefore, our first consideration in life should be to give him our love.
तो पहला चीज ये है कि हमें उनको